पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ की बातचीत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज नई दिल्ली में सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ कर रही है बजट पूर्व चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज नई दिल्ली के 53वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगी। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के दौरान देश के कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया और आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 सुपर 8 मुकाबलों में आज भारत और बांग्लादेश का मैच होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ बातचीत की। आज दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में कुछ समझौते पर भी हस्ताक्षर करेंगे। इससे पहले शेख हसीना ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगी। शेख हसीना भारत की दो दिवसीय यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम उनके साथ मुलाकात की। बैठक के बाद डॉ जयशंकर ने कहा है कि शेख हसीना की यात्रा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को रेखांकित करती है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बांग्लादेश भारत की पड़ोस प्रथम नीति का एक प्रमुख घटक है। दोनों देशों के बीच व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वाणिज्यिक, सुरक्षा, ऊर्जा और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व चर्चा कर रही हैं। बैठक में गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के मुख्यमंत्री और बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन और वरिष्ठ अधिकारी भी भाग ले रहे हैं। कल वित्त मंत्री ने किसान संघों के प्रतिनिधियों और कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया था। इससे पहले वे वित्तीय और पूंजी बाजार क्षेत्र में प्रमुख विशेषज्ञों, उद्योगपतियों और औद्योगिक संघों के साथ साथ प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ भी इस तरह के परामर्श कर चुकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज दोपहर नई दिल्ली में 53वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगी। नई सरकार के गठन के बाद यह जीएसटी परिषद की पहली बैठक है। जीएसटी परिषद की आखिरी बैठक पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हुई थी। इस दौरान परिषद ने नए निर्णय लिए थे। जीएसटी परिषद ने प्रस्तावित जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की शर्तों में पात्रता और आयु के संबंध में संशोधन की सिफारिश की थी। परिषद ने मोटे अनाज और आटे से तैयार खाद्य सामग्री पर भी शून्य दर की सिफारिश की थी। साथ ही गुड़ पर जीएसटी कम करने का भी निर्णय लिया गया था, जिससे गन्ना किसानों को बकाया राशि के तेजी से भुगतान के लिए राहत मिले और पशु चारा निर्माण की लागत में कमी आए। केंद्र ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए एक कड़ा कानून बताया है। इसमें दोषियों को अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए की जुर्माना का प्रावधान किया गया है। आधिकारिक गजट में प्रकाशित एक अधिसूचना में कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि कानून के प्रावधान आज से लागू हो जाएंगे। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम विधेयक 2024 6 फरवरी को लोकसभा और 9 जनवरी को राज्यसभा से पारित कर दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को इस विधेयक को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया। संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग भर्ती परीक्षा निकायों और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा को अपरिहार्य परिस्थितियों और लॉजिस्टिक व्यवस्था के कारण स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षा 25 से 27 जून 2024 के बीच होने वाली थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने कहा है कि इस परीक्षा के आयोजन के लिए संशोधित कार्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बाद में घोषित कर दिया जाएगा। एनटीए ने कहा है कि किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थी एनटीए हेल्प अध्यक्ष को इस फोन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर है 0114075900 और 0116922770। इसके अलावा एनटीए से csirnet@nta.ac.in पर मेल करके लिखित जानकारी भी ले सकते हैं। असम के कामाख्या मंदिर में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला आज से शुरू हो गया है। इसका समापन इस महीने की 26 तारीख को होगा। इस मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। त्योहार के दौरान कामाख्या मंदिर के द्वार बंद रहेंगे, लेकिन 25 तारीख की रात 9:08 पर फिर से खोल दिए जाएंगे। कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। ओडिशा में स्थित पूरी श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन की स्नान यात्रा का अनुष्ठान आज से शुरू हो गया है। दाता सेवकों ने सुबह जय जगन्नाथ के मंत्रोच्चार के बीच एक पढ़ी जुलूस के रूप में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा, सुदर्शन और मदन मोहन को मुख्य मंदिर के गर्भगृह में रत्न सिंहासन से बाहर लेकर आए हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान केरल, कर्नाटक और गोवा में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुदुचेरी में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्वी भारत में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों में भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल में गंगा के आसपास, बिहार, झारखंड, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में बिजली चमकने तथा गरज और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस महीने की 24 तारीख तक भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहने का अनुमान व्यक्त किया गया। मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में 1 जुलाई से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ समारोह पूर्वक किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उच्च शिक्षा विभाग की गतिविधियों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कहा है कि प्रदेश में ड्रोन नीति बनाई जाएगी। उन्होंने विनियमन, कृषि और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में रोजगार के बढ़ते अवसरों को देखते हुए अध्यापन की बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF 2024 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के उत्कृष्ट प्रतिभा प्रदर्शन के साथ कल रात संपन्न हो गया। महोत्सव के निदेशक प्रथुल कुमार ने बताया है कि MIFF के इस संस्करण में प्रतिनिधियों और फिल्म पंजीकरण की संख्या सबसे अधिक रही। तेलंगाना के राज्य मंत्रिमंडल ने 15 अगस्त तक राज्य के प्रत्येक किसान के लिए 2,00,000 रूपये तक का फसल ऋण माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कल हैदराबाद में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने मीडिया से कहा है कि 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के बीच लिए गए फसल ऋण माफ होंगे। उन्होंने बताया है कि सरकार जल्द ही सरकारी आदेश के अंतर्गत फसल ऋण की माफी के लिए पात्रता मानदंड पर दिशा निर्देश जारी करेगी। रफा में उत्तर और विस्थापित फिलिस्तीनियों के शिविरों पर कल इजरायली सेना की गोलाबारी में कम से कम 25 लोगों के मारे जाने और 50 अन्य के घायल होने की खबर है। इजरायल ने पहले भूमध्य सागरीय तट पर एक ग्रामीण क्षेत्र मुवासी में रिहायशी क्षेत्रों के आसपास के स्थानों पर बमबारी की है। और आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में आज शाम एंटीगुआ के नॉर्थ साउंड के सर विनियन रिचर्ड्स स्टेडियम में सुपर 8 मुकाबलों में भारत और बांग्लादेश का मैच होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8 शुरू होगा। अब मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ बातचीत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ कर रहे हैं बजट पूर्व चर्चा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान देश के कुछ राज्यों में भारी से बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 सुपर 8 मुकाबले में आज भारत और बांग्लादेश का मैच होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
Good evening, this is Akashvani, the news read by Shubhashachi Bhattacharya. India and Bangladesh today exchanged agreements and renewed multiple memoranda of understanding, MOUs, in different fields. These agreements include in the areas of digital and green partnerships, maritime cooperation, blue economy, health and medicine, space collaboration, railway connectivity, oceanography, disaster management and fisheries. The agreements were exchanged after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and his visiting Bangladeshi counterpart Sheikh Hasina at Hyderabad House in New Delhi. In a press statement, PM Modi said Bangladesh is situated at the confluence of India's neighborhood first policy, ACT-EAST policy, Vision Sagar and Indo-Pacific vision. Finance Minister Nirmala Sitharaman today held the pre-budget meeting with finance ministers of all states and union territories in New Delhi ahead of the forthcoming general budget. The meeting was attended by chief ministers of Goa, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Sikkim and deputy chief ministers of Bihar, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan and Telangana as well as state finance ministers and other ministers. Union Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary, Finance Secretary T.V. Somnathan, Secretary Department of Economic Affairs and senior officers also attended the meeting. The 53rd GST Council meeting will be held in New Delhi in a short while from now. Finance Ministers Nirmala Sitharaman will chair the council meeting, which is taking place for the first time after the formation of a new government at the centre. The last GST Council meeting was held in October last year, in which it had recommended amendments in conditions of appointment of President and member of the proposed GST Appellate Tribunals regarding eligibility and age. The council had also recommended a nil rate for food preparation of millet flour in powder form, besides reducing GST on molasses to provide relief to cane farmers for faster clearance of dues and reduce cost of manufacturing cattle feed. In Orissa, Devasnana Purnima of Snana Yatra, rituals of Lord Jagannath and his siblings at Puri Sri Mandir commenced today. Early this morning, the Daita servitors escorted out Lord Jagannath, Lord Balabhadra, Devi Subhadra, Sudarshan and Madan Mohan from Ratna Singhasan in the sanctuary of the main temple in a Pahanadi procession amidst chanting of Jai Jagannath. They are taken to the Vathing altar, Snanavedi, located on the outer temple complex. Priests consecrated the water brought from the sacred well, also called Golden Well, located inside the temple complex before the ritual. A total of 108 pitchers of aromatic and herbal water were used in Lord's bathing. In Assam, the famous Ambubachi Mela began today at the Kamakhya Temple. This will conclude on 26th of this month. Lakhs of devotees have gathered for the Ambubachi Mela. The event celebrates the annual menstruation of the goddess Kamakhya, symbolizing fertility and womanhood. During the festival, the gates of Kamakhya Temple will remain closed. The temple gates will reopen at 9:08 p.m. on 25th of this month. Assam Tourism Minister Jayanta Malla Barua said that elaborate arrangements have been made for the devotees. Union Home Minister Amit Shah will inaugurate Fast Track Immigration Trusted Traveller Program FTI-TTP at Indira Gandhi International Airport in New Delhi today. It is an initiative by the government designed for Indian nationals and overseas citizens of India card holders to avail this facility. Eligible individuals will need to apply online and submit their biometrics along with other required information. Registration or the FTI will be completed after necessary verifications and confirmation of eligibility. After paying the processing charges, the application will be accepted. The FTI-TTP aims to revolutionize passengers' travel experience, making it faster, easier and more secure. In Tamil Nadu, the death toll in the Kallakuchi hook tragedy has risen to 54. The state government has advised the district administration to take immediate action against those involved in brewing illicit arak and liquor. Today, the AIADMK members walked out of the state assembly demanding immediate discussion. Speaker Appavu alleged the opposition for trying to gain political mileage from the issue. State BJP held protests against the governments in various places in Tamil Nadu. That's all in this news bulletin. Namaskar.